نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يؤمنون بالغيب، اس سیریز میں سے ایمان بالآخرہ. الحمدللہ، زندگی اور موت ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں، ایک آغاز ہے تو دوسری انتہا ہے، ایک میں سے دوسری نکلتی ہے اور دوسری میں سے پھر پہلی نکلتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے قصے کے تذکرے کے بالکل قریب سورہ بقرہ، اگر آپ کھولنا چاہیں جب بھی کبھی تو کھولیں گے نا، تو اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس واقعے کے فوراً بعد کیا کہا؟ کنتم امواتاً فاحیاکم فکیف تکفرون وکنتم امواتاً فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا گیا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ایک اور موت کے بعد. تو آپ کی میری زندگی دو موتوں کے بیچ کا نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تین چار مختلف مراحل سے گزار کر اپنے پاس پیش کرنا، اور یہ سب کچھ جو آپ کے اور میرے ارد گرد ہو رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، اس کے لاشعور میں ایک خواہش چھپی ہوئی ہے، اور وہ کیا؟ کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں. وہ ہستی جس نے مجھے بنایا، جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو بنایا، وہ خود کیسا ہے؟ اور اسی کے لیے ہمیں بیچ میں تیاری کا وقت دیا گیا. آپ کسی کو بھی جاتے ہیں ملنے، یا کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو تیاری کرتے ہیں نا، اور کرنی چاہیے، یا آپ اگلے کو عزت دیتے ہیں. اگر آپ سر دھاڑ منہ ڈھا کے چل پڑے تو اگلا سوچے گا کہ ہو سکتا ہے ان کو میرے گھر آنے کی خوشی نہیں ہوئی. کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے گھر پھیلا ہوا، تو اگلا کہے گا کہ شاید میں نے ان کو ڈسٹرب کیا. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس زندگی میں اپنے سے ملنے کے لیے تیاری کا وقت دیا، اور اس ساری تیاری کے دوران ایک انسان اگر ہر وقت یہ احساس دل میں رکھے کہ میرے پاس جو وقت ہے، اس وقت کے اندر ہی میں نے جتنی میکسیمم، جتنا زیادہ سے زیادہ خود کو سجا سکی، سنوار سکی، جتنا زیادہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل کر سکی، میں نے اس کی کوشش کرنی ہے. اور پھر ایک دعا اور ایک خواہش بندہ اپنے دل میں رکھ لے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ جب قیامت کے دن تو مجھے دیکھے تو تجھے میرے اوپر پیار آ جائے. 100 لفظوں کی ایک ہی کہانی ہے. کیا آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتے ہیں؟ اور جتنی زیادہ یہ تیاری آپ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی، اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کے منتظر بھی رہیں گے. کبھی کہیں جانا ہو اور گھر کا کوئی فرد تیار ہو کے بیٹھ چکا ہو، کیا دوسروں کا بھی تیار ہونا دوبر نہیں کر دیتا؟ جلدی کر لو، دیر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور بالفرض کوئی تیار نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر اور صبر، انتظار، نہیں نہیں ابھی نہیں جانا. ایسے ہی ہوتا ہے نا عام طور پہ، کہیں بھی جانا ہو جو تیار ہو چکے ہوتے ہیں ان کا دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا، کہتے جلدی کرو، اور جو تیار نہیں ہوئے وہ کہتے ٹھہر جائیں بھی نہیں. چلیے اپنی تیاری چھوڑیں، مہمان آنے ہیں، آپ کے گھر پہ دعوت ہے اور آپ نے کھانا بھی بڑے دل سے بنایا ہے، اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ مہمان بالکل تازہ تازہ کھانا کھائے، اور کھانا پک چکا ہے مہمان نہیں آ رہے، دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آ جاؤ، دم ٹھنڈا ہوگا، حیدرآبادی بریانی سو گئی، مرغی ٹھنڈی ہو گئی، یہ ہو گیا. اس وقت یہ شوق کم رہ جاتا ہے کہ وہ آئیں اور ہم ملیں، فکر یہ لگی ہوتی ہے کہ میرا کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے. اور اس کا اپوزٹ، کھانا نہیں بنا اور مہمان بس نیویگیٹر ان کا بتا رہا ہے کہ 8-10 منٹ رہ گئے، پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے سگنل بند ملے، رش ملے. اب آپ کو یہ دو مثالیں یاد آ رہی ہوں گی. یہی ہے آج کے پورے لیکچر کی کہانی. وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب سے ملنے کی، ملاقات کی تیاریاں کر چکے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن کب آئے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے. जब मेहमान के आने का इंतज़ार होता है तो वक्त बोझल लगता है। मोमिन की कैफियत इस दुनिया में उस मेज़बान की कह लीजिए कि जो सब चीज़ें तैयार करके अपने मेहमान का मंतज़िर है, या अपोज़िट कह लीजिए, अगर आप ख़ुद मेज़बान हैं तो मेहमान का इंतज़ार आप करते हैं ना, अल्लाह भी आपका इंतज़ार करता है। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, याद रखिए। ये तो हम अपनी छोटी सी अकल और समझ में बात को लाने के लिए बातें कर लेते हैं ना, अल्लाह के लिए कोई जज्बा जो हम इंसानों के एक दूसरे के लिए होते हैं इसकी मिसाल नहीं। ये मजबूरी हमारी है, हमने मिसाल से ये समझना है कि हमारे रब के साथ हमारा मामला कैसा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बड़ी प्यारी रिवायत हमें मिलती है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है। अल्लाह के नबी, अल्लाह से मिलने से मतलब ये मौत या मौत की तैयारी करता है, मरना चाहता है। तो हम में से तो कोई भी नहीं मरना चाहता, तो फरमाया इसका मतलब ये नहीं है कि मौत, इसका मतलब ये है कि इंसान तैयारी करे। तो आपको मुझे एक बहुत बड़े इवेंट की तैयारी करने के लिए इस दुनिया में भेजा। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये ईमान बिल गैब सीरीज में से ईमान बिल आखिरा का एक हिस्सा है, और मौत से ही आखिरत शुरू हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ममात फकत कामत कयामत हो, जो मर गया उसकी कयामत कायम हो गई। हमने मौत के मौजू में आज के इस टॉपिक से पहले तीन टॉपिक किए हैं। मौत एक अटल हकीकत, बुरी मौत से बचने के असबाब, हुस्ने खातिमा के असबाब, और चौथा आज हमारा टॉपिक है मौत का सफ़र। ये क्या है? ये जर्नी ऑफ डेथ है, जर्नी ऑफ सोल। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ अभी भी अंधेरे में है कि मरने के बाद क्या होता है। हम बचपन से एक किताब अपने घरों में देखते थे, और पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट हर घर में होती थी वो किताब, मौत का मंजर। फिर उसके अंदर टॉपिक होते थे मरने के बाद क्या होगा। लोगों ने बहुत कुछ कहा, और कुछ ज़यीफ़ रिवायतें और कुछ और भी चीज़ें, लेकिन आज का हमारा ये पूरा सेशन क्या है, ये हकीकत में कुरान पाक की चंद आयतों और ऑफ कोर्स अहादीस को सामने रखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जब एक नेक शख्स मरता है तो उसके साथ क्या होता है, और जब एक फाजिर और काफिर दुनिया से जाता है तो उसके साथ क्या होता है। आज इसकी जो आयात है हमारे सामने वो है सूरत बकरा की आयत नंबर 164। इन फी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार वन नहारि वल फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास वमानज़लल्लाहु मिनस्समाई मिम्माइन फअहया बिहिल अर्दा बाद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्ली दाबतिन वतस्रीफ़िर्रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्खरि बैनस्समाई वल अर्द लआयातिन लिक़ौमी याक़िलून। इस हकीकत को पहचानने के लिए, याद रखिए इस आयत से पीछे अल्लाह सुबहान तआला की इस कायनात में फैलाई हुई निशानियों और कुफार के कुफर और मुशरिकों के शिर्क की बात थी, और ईमान वालों की अल्लाह से मोहब्बत की बात थी। अब फरमाया कि इस हकीकत को पहचानने के बाद अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है, तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं, इनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख में रात और दिन के मुसलसल एक दूसरे के बाद आने में, इन कश्तियों में जो इंसान के नफ़े की चीज़ें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के इस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है, और अपने इसी इंतज़ाम की बदौलत ज़मीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं। एक तो इस आयत के साथ एक अहम बात नोट कर लें, जो कभी आपने अगर नहीं सुनी, इस एक आयत में, बल्कि मेरे साथ गिनना ही चाहें तो गिन लें, आसमानों ज़मीन की तख्लीक, रात और दिन का आना जाना, कश्ती जो चलती है पानी में लोगों को नफ़ा देने के लिए, आसमान से बरसने वाली बारिश जिसके लिए ज़मीन को मुर्दगी के बाद जिंदा किया जाता है, हवाओं का चलाना, बादलों का मुसख़्खर किया जाना, सात निशानियां। इस एक आयत को उलमा आयतुल आयात कहते हैं, अल्लाह की निशानियों वाली एक आयत है। यानी जिसको रब नहीं नज़र आता, जिसका दिल नहीं मानता कि अल्लाह है और फिर हम उसकी बात माने, तो फिर वो ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र उठाकर देख ले, कायनात की एक एक चीज़ बोल बोल कर बता रही है कि कायनात की हर चीज़ एक ख़ास वक्त तक इंसानों के नफ़े के लिए है, और इसके बाद ये दुनिया से चली जाती। सूरज आता है असर के करीब, सूरज बेचारे की मौत का वक्त करीब आ रहा होता है, मगरिब के साथ ही सूरज दम तोड़ देता है। चांद बेचारे को एक महीने में तकरीबन 27-28 मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। बीच में कुछ दिन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, कभी बड़ा सेहतमंद होता है 12-13-14 को। तो ये कायनात का हेर फेर बता रहा है कि अल्लाह सुबहाना तआला जिंदगी और मौत का मालिक है, और अल्लाह ही के हुक्म से पूरी कायनात, कायनात में जो कुछ है और इसके साथ साथ इंसान को मौत आती है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान की मौत का फैसला करते हैं तो अपने फरिश्ते, जिसका नाम हमें इज़राइल नहीं मिला कहीं भी, हमारी फरिश्तों वाली जी सीरीज भी चल रही है, एंड पे आप चाहेंगे तो मैं आपको वो दिखा दूंगी कि आप कहाँ से सुने, ईमान बिल मलाइका में। लेकिन जिस फरिश्ते का तذکرہ कुरान से हमें मिलता है वो मलकुल मौत है। अहदीस से और कुरान की आयात से हमें मलकुल मौत यानी वो फरिश्ता जिसे अल्लाह ताला ने रूहें कब्ज करने पर मामूर की है, ये उन चार बड़े फरिश्तों में से एक है कि जो जिंदगी और मौत के मामलात पे अल्लाह की तरफ से मुसल्लत है। वो कौन है? मौजू ना पलट जाए इसलिए बताती नहीं, वो आप अलग से सुन लीजिएगा ईमान बिल मलाइका में। अब क्या ये मलकुल मौत अकेला ये काम करता है या उनके साथ कोई दूसरे फरिश्ते भी होते हैं, तो इसके बारे में कुरान क्या कहता है? आप में से अक्सर सिस्टर्स रात को सूरह सजदा की तिलावत करती होंगी। आयत नंबर 11 में क्या आता है? कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम। ए नबी, आप कह दीजिए कि तुम्हारी रूहें वो मौत का फरिश्ता कब्ज़ करता है जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। तो इस आयत से क्या पता चला कि रूहों को कब्ज़ करने की जिम्मेदारी मलकुल मौत की है। और बाज़ आया से ये पता चलता है कि ये काम वो अकेले नहीं करते, उनके साथ उनकी पूरी एक टीम है। वो कहाँ है वो भी लिख ले। सूरत अलनाम आयत नंबर 61। वहुवल काहिरु फौक इबादिही वयुर्सिलु अलैकुम हफजह हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ्फतहु रुसुलुना वहुम ला युफर्रितून। और वही अपने बंदों पर गालिब और बरतर है और तुम पर निगहदाश्त रखने वाले फरिश्ते भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ पहुँचता है। सोचिए अपने ऊपर ले, जब तुम में से किसी की मौत आ पहुँचती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा भी कोताही नहीं करते कि अभी ठहर जाएं, अभी थोड़ी देर बाद, यानी जब मौत का वक्त आता है, फरिश्ता स्विफ्टली, प्रॉम्प्टली, रिफ्लेक्सली, जिसको उर्दू में वो कहते हैं फिल फॉर, वो काम कर देता है। ये जो फरिश्ते को अल्लाह ने इंसान के ऊपर मुकर्रर किया है ना कि तुमने इस बंदे की फलां वक्त फलां जगह फलां काम के दौरान जान लेनी है, फरिश्ता उसमें इतना एक्यूरेट है जैसे आप कहते हैं घड़ी की सुइयां। आपने एक वाक्य सुना होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का। आप कहते हैं कि उनके पास जिन्नात भी थे और उनको अल्लाह ने कुछ अनयूजुअल चीज़ें दी हुई थी, और उनके पास एक शख्स था जो बैठा था और कोई दूसरा उसको मुस्तकिल घूर रहा था। जो दूसरा शख्स उसको घूर रहा था तो उसकी वजह से इसके दिल पर इतना रोब तारी हुआ कि घबरा के कहने लगा कि सुलेमान, आपके पास तो जिन्नात हैं, आप मुझे यहाँ से दूर भेज दें, उड़ा के भेज दें। इन्होंने किसी जिन को कहा कि इसको छोड़ो झुके, वो 5 मिनट की बात थी, उस जिन ने उसको दुनिया के किसी दूर दराज इलाके तक पहुँचा दिया। जब वहां पहुंचाया, थोड़ी देर बाद वहां मलकुल मौत आया, उसकी जान ले ली, ये मामला खत्म हो गया। बाद में एक मौका ऐसा आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सारी बात मैं आपको ऐसे सुना रही हूँ, ये पूरा वाक्य है हदीस में, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो कौन है तो पता क्या चला कि सुलेमान की महफिल में वो शख्स जो बैठा था उसकी मौत का वक्त बिल्कुल करीब था, और वो मौत उसकी आनी थी उस जगह जहां उसको बचाया गया, और घूरने वाला शख्स जो था वो मलकुल मौत था, और वो इस बात पे घूर रहा था कि अल्लाह ने तो मुझे इसकी जान लेने के लिए मुकर्रर किया है फलां जगह, तो ये भी बैठा है, कैसे पहुंचेगा वहां? अल्लाह ने उसकी घूरी से उसके दिल में डाल दिया खौफ और वो वहां चला गया। हमारे यहाँ नहीं कहते कि बंदे की जहाँ मौत लिखी होती है वहां कोई जरूरत रख दी जाती है? तो जब जहाँ हमारी मौत का वक्त आएगा, एक सेकंड की देर नहीं होगी। इंसान की रूह निकालने वाले फरिश्ते दो तरह के होते हैं, एक वो जो अहले ईमान की रूह बड़े आराम से निकालते हैं, अल्लाह करे हमारे लिए वही फरिश्ते हों, और दूसरे वो जो कुफार की रूहों को बड़ी सख्ती से निकालते हैं। दोनों का तذکرہ किस सूरत में है? इब्तदाई आयतें, सूरत नाजियात की आयत नंबर 1 और 2। वन नाजियाती गर्का वन नाशिताती नश्ता। डूब कर सख्ती से रुख खींचने वालों की कसम, गिरा खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम। अब ये गिरा खोल कर छुड़ा देना ये क्या है? इसकी वजाहत हमें हदीस में आती है कि मशकीज़ा, वाटर बॉटल जो होती है ना, सैक, लेदर का बैग एक होता था जिसमें लोग पानी डाल के इधर से उधर ले जाते थे। मशकीज़े का मुंह खोला जाए तो इसमें मौजूद पानी बड़ी आसानी से इसमें से निकल कर बह जाता है। और सख्ती से रूह खींचने की वजाहत हदीस से पता चलती है, मलमल का कपड़ा कांटेदार झाड़ी पर डाला जाए और जब कांटे उसके अंदर खूब अच्छी तरह पेवस्त हो जाएं तो उसे एक तरफ से पकड़ कर जोर से खींचा जाए और कपड़े के चिथड़े उड़ जाए। बाज़ रिवायात से पता चलता है कि गुनाहगार आदमी की रूह फरिश्ते इसी तरह सख्ती से निकालते हैं। अल्लाह ताला हमें खुद भी हिदायत पे रखे और दुनिया में जितने लोग इस वक्त कुफर पे और फिस्क पे हैं हमें उनकी हिदायत का जरिया बना दे। कभी भी ऐसे लोगों से नफरत ना किया करें, गुस्सा ना किया करें, बल्कि उनके लिए दुआ किया करें। आप तो माशाल्लाह खुशकिस्मत है, इस मुल्क में तो शायद ही कोई नॉन मुस्लिम दिखता हो। हम जैसों की सख्ती है जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, मौके भी हैं। हर शर के साथ खैर भी होती है, यानी अल्लाह ताला ने शर में खैर, खैर में शर रखी हुई है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रखी हुई है। हमारे पास जो दावा के मौके हैं वो भी सबसे ज्यादा है। तो आइए जरा देखते हैं कि मोमिन और काफिर शख्स की मौत का मंजर क्या है। मौत के वक्त एक तरफ मौत की सख्तियां होती हैं, इंसान इस बात से खौफ खा रहा होता है कि न जाने मरने के बाद उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुदा ना खास्ता किसी का ऑपरेशन होना हो, पहले कुछ दिन खौफ आने लग जाता है। ऑपरेशन थिएटर से डर लगता है, बेहोश होने से डर लगता है, स्ट्रेचर पे डाले जाने से डर लगता है, चाहे ठीक भी हो जाना हो बाद में। बिल्कुल इसी तरह एक नेक सवाले और बाअमल शख्स जो होता है ना मोमिन, अल्लाह ताला की तरफ से ये नरमी की जाती है कि उसे कम अज़ कम ये बिशारत दे दी जाती है कि उसकी आखिरत महफूज है और बेहतर है और उसका रब उससे राजी है। और ये बिशारत फरिश्तों के जरिए दी जाती है और इस मौके पर आने वाले फरिश्तों के चेहरे सफेद, खूबसूरत और रोशन होते हैं। अब ये कहाँ लिखा है? मेरी फेवरेट आयत है, यकीनन आपकी भी होंगी, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका अल्मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तूअदून, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। सूरत फुस्सिलत की आयत नंबर 30 से 32। दूसरा नाम के सूरत का हामीम सजदा। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम पर कुछ भी अंदेशा और गम नहीं, इस जन्नत की बिशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। तुम्हारी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है, गफूर रहीम की तरफ से ये सब कुछ बतौरे मेहमान के है। ये है वो आयत जिसकी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। इस्लाम है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी है, नमाज रोजे की आदत भी है, इस्तकामत नहीं है। आप देखिए, बंदा जब तक ट्रस्ट वर्दी नहीं होता आपका दिल नहीं खुलता उसके लिए। जब आपका इस्तकामत क्या है, आप अल्लाह को ये साबित कर दें कि मैं सिंसियर हूँ। आप सबके घरों में कोई ना कोई मुलाजिम होते होंगे पहले भी। हम जब छोटे थे ना तो आंख खुलने के साथ हमने देखा एक बाबा हमारे घर में होता था। अब बाबा हमें बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता था जैसे कोई अपने पोतों को करता है, और वो घर का एक फर्द था। हमारे वालिद को, घर वालों को इतना यकीन था कि सारा घर उसके सर पे छोड़ के हम कहीं चले जाएं। बल्कि वो बाबा हम जिस बंदे के सर पे मुसल्लत कर देते थे ना तो वो कहता था, हाजी साहब, ए बाबा जी तो जान छुड़ाओ, हमारा घर बना। ऐसे ही याद आ गया तो आपको तो घर बनवाना बनाना कितना मुश्किल काम है और फिर उसमें कितनी हेरा फेरियाँ होती हैं। तो बाबा जो था ये सारा दिन वो मजदूरों और मिस्त्रियों के सर पे, फिर रात को उसने शिकायतें लगानी, हाजी साहब हराम खांदे, चोरी की थी, उनकी चोरियाँ पकड़ पकड़ के लाता था। एक दफ़ा मेहमान आए तो बाबा जी मुर्गी ला दो। अब यहाँ बात ना पलट जाए लेकिन बात सच है कि उस दौर में मुर्गी सिर्फ मेहमान के आने पे पकती थी। और आज आपके अपने घर में जाके गिनिएगा फ्रिज फ्रीजर पेंट्री में किस किस फॉर्म में मुर्गी पड़ी हुई है। तो बाबा आ गया मुर्गी लेके, काफी ज्यादा पौना घंटा दूर जाता था, मुर्गी लेके आ गया। जब अम्मी ने धोनी चाही, मुर्गी धोई तो उसमें एक टांग ही नहीं, और देखे टांग एक तो वाली मुर्गी तो नहीं हो सकती, इन्होंने जिक्र ऐसी कर दिया बाबा मुर्गी में एक टांग थी। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं कहा। घंटा डेढ़ गुजरा तो बाबा एक खाली टांग उठा के लेके आ रहा है, जाके उसके सर पे उसको बोल बाल के चोरी की हराम के एक और मुर्गी कटाई, उसकी टांग कटवा के लेके। तो बाबा हमारा मुखलिस था, अल्लाह ये चाहता है। आपकी मेरी काबिलियत है तो नहीं, अल्लाह ने देखनी, अल्लाह ने आपको बनाया उसको पता आप कितने पानी में है। माँ को अपने बच्चे की काबिलियत देख रही होती है? नहीं, अल्लाह सुबहाना तआला ने बंदे की ये कैफियत देखनी कि ये हर हाल में मेरा है, इट्स माई। हम ये जो जुमला कहते हैं और सुनते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने इसको मौत से जोड़ा हुआ है, तो चले मौत के टॉपिक सही इसमें ही समझ लें, क्या ये जुमला मौत के वक्त पढ़ने का, सारी जिंदगी पढ़ने का? इन्नी लिल्लाह, मैं अल्लाह की हूँ। और इस्तकामत में क़यामत है, सबसे मुश्किल इस्तकामत है। कभी कभी नेकी खो जाना इट्स ओके, नेक मुस्तकिल रहना मुश्किल है। क़यामत का दिन है, आप सोचिए, मिसाल है कि आपका नाम है अमाल खुला है, चलिए ये किताब है, अब फरिश्ते आपकी किताब खोल रहे हैं, आप कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 13 है, 12 और 13 इन बिटवीन कह लें कि वकुल्ला इंसान ए नलजम ना हुता रहूफ़ी नुकी व नुखरी जुलहू योमल क़ियामत किताब यलगाहु मंशूरा। हर इंसान की गर्दन में हमने उसका नाम अमाल लटकाया हुआ है, और क़यामत के दिन हम उसको एक खुली हुई किताब की सूरत में लाएंगे और उसको कहेंगे इक़रा किताब कफ़ा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। सबको आयत याद आ गई होगी, कितनी खूबसूरत वो आयत है। जब इंसान की किताब ज़िंदगी दुनिया में उसके सामने होती है, आज हम जिंदा हैं, आप और मैं आज हम मौत के मौजू पे बात सुन रहे हैं, मौत का सफ़र सुन रहे हैं, अभी हमने शुरू नहीं किया। अच्छी मौत और बुरी मौत, अच्छे इंसान की मौत और बुरे मौत, बुरे इंसान की मौत पढ़ रहे हैं। हम में से किसी को भी इनमें से कोई एक कैफियत दारी नहीं है। तभी मौका है, अभी कलम चल रहा है, अभी सहीफा खुला हुआ है, अभी किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, और किसी भी वक्त हम अपनी सारी गलत चीज़ों को अंडू कर सकते हैं। इस्तकामत यह है कि बंदा फरिश्तों से खुशखबरियां पाता है कि ए अल्लाह ये बंदा तेरा ही है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है ना, वो ये है कि बंदा अल्लाह को रब कहे, फिर दूसरा दर्जा होता है उसका इजहार करे, और तीसरा दर्जा होता है फिर उस पर जम जाए। हज़रत बिलाल, अहद अहद, इस्तकामत ही ना। हज़रत आसिया, रब इब्न इंदा का बैतन फिल जन्ना। फिरौन जैसे जुल्म पूरी दुनिया के लोगों के इकट्ठे किए जाए ना, तो फिरौन के जुल्म उससे ज़्यादा थे, और सारी दुनिया के शोहरों की दौलत इकट्ठी कर दी जाए तो फिरौन की दौलत उससे ज़्यादा होगी। लेकिन बीबी आसिया को इस्तकामत के दर्जे से हटा नहीं सका, क्यों? क्योंकि कालू रब्बुना। जब बंदे को रब की समझ आती है, रब क्या है। परसों मुझे एक रिपोर्ट दिखी है, नासा ने एक नया, जैसे गैलेक्सीज होती है ना, एक पूरा सैयारा डिस्कवर किया है, और मेड ऑफ डायमंड, और वो कितना बड़ा है, आपकी इस दुनिया से 5 गुना बड़ा। इतना सा डायमंड लगा देते हैं नज़र भी नहीं आता, और कहते हैं ये जी $5,000 दे दें। मेरा तो दिल बंद हो गया, उसकी उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी डाली हुई थी। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, पहाड़ों की तहों में जो सोना इतना डाल देता है, तो वो अगर बाहर निकाल देगा तो क्या है। उस रब की जब मार्फत मिल जाए, फिर ये नहीं हो सकता कि बंदा इस दुनिया के पीछे भागे। हम फिसल जाते हैं, हम छोटी सी चीज़ पे ऐसे हो जाते हैं कि बस इसके बगैर हम नहीं जी सकते। तो ये खुशखबरियाँ फरिश्तों की तरफ से कब मिलेंगी, जब जिंदगी अल्लाह ताला के नाम पे लगी होगी। और इसके बरक्स काफिर और फासिक, उनके साथ नरमी तो दूर की बात है, उल्टा सख्ती से काम लिया जाएगा। सूरह मोहम्मद खोल लीजिए, आयत नंबर 27, फकैफ इज़ा तवफ्फत हुमुल मलाइकतु यद्रिबून वुजूहहुम वअदबारहुम। बस इनकी कैसी दुर्गत होगी जबकि फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करते हुए इनके चेहरों और इनकी कमरों पर मारेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। तो मलकुल मौत और उनके साथी अहले ईमान और अहले कुफार की जान कैसे निकालते हैं, 3 हदीसें सुनाऊंगी आपको, क्योंकि ये बात मैं अपने से सुना नहीं सकती। ये ऐसी बात नहीं कि आप स्टोरी बना के सुना दें या इसको इंस्टाग्राम में शेयर कर दें, ये उस जुबान से निकली हो जो वमा यंतिकुनिल हवा, तो पहली रिवायत हज़रत बरा बिन आज़िब से है, कहते हैं कि हम एक अंसारी के जनाजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जब हम कब्र के पास पहुंचे तो अभी कब्र तैयार नहीं थी, चुनाचे आप किबले की तरफ मुंह करके बैठ गए और हम भी आपके इर्द गिर्द खामोश होकर इस तरह बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हों, यानी हर एक सोच में डूबा हुआ। सिंध आपके दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। आपने सर उठाकर दो या तीन मरतबा फरमाया, अल्लाह तला से अजाब कब्र की पनाह मांगो। फिर फरमाया, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर, अब आप तस्वर में हर एक को लाइए, अपने आप को भी लाइए और दुआ कीजिए, जो आपको अच्छे लगते हैं लोग उनको भी लाइए, जो अच्छे नहीं लगते उनको भी लाइए, एटलीस्ट हर मुसलमान को तो लाइए, किसी मसलक का इमाम है उसको भी लाइए, किसी भी जमात के वो रहनुमा हैं लाइए। मोमिन हमेशा दूसरों के लिए खुशगुमान होता है। तो फरमाया, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर आखरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से इसके पास फरिश्ते आते हैं, ऐसे रोशन चेहरे वाले, गोया कि इनके चेहरे सूरज हैं। इनके पास जन्नत से लाया हुआ कफन और जन्नत ही की खुशबू होती है। वो गदे निगाह तक आकर बैठ जाते हैं। आखिर में मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और इसके सर पर बैठकर फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, और एक रिवायत में है, ए मुतमईन रूह, आपने परवरदिगार की मगफरत और इनायत की तरफ चल। फिर वो रूह इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा मशकीजे के मुंह से टपकता है। चुनाचे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे ले लेते हैं और आंख झपकने से पहले दूसरे फरिश्ते इनसे वसूल कर लेते हैं। फिर इसे जन्नत में से लाए हुए कफन और खुशबू में रख लेते हैं। इससे दुनिया की बेहतरीन खुशबू के लपके उठते हैं। फिर जब फरिश्ते इसे लेकर ऊपर जाते हैं तो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो दरियाफ्त करते हैं, ये किसकी इतनी अच्छी रूह है। कभी को बड़ी प्यारी खुशबू लगाकर आपके पास से गुजर जाए ना तो लोग पलट कर देखते हैं, उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही होती है कि कहते हैं, ये किसकी इतनी प्यारी रूह है। फरिश्ते जवाब देते हैं, ये साहेब फलां बिन फलां हैं, यानी वो मरने वाले के उस खूबसूरत तरीन नाम से उसे याद करते हैं जिससे वो दुनिया में पुकारा जाता था, इसलिए अच्छे नाम रखिए। इस तरह वो फरिश्ते से लेकर आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं। फिर वो इसकी खातिर दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं तो दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर अगले आसमान तक इस आसमान के मुकर्रब तरीन फरिश्ते से अलविदा कहकर आते हैं। यही मामला सातवें आसमान तक चलता है। इस मौके पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे का नाम है अमाल, बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में लिख दो और इसकी रूह को ज़मीन में इसके जिस्म में वापस कर दो। अब वापस आइए, ऊपर से होके अब रूह नीचे आ रही है। फिर कब्र में इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, वो इसे बैठने का कहते हैं। फिर दोनों इससे इस तरह सवाल पूछते हैं, ये है असूले सलासा, थ्री फंडामेंटल्स, कब्र के तीन सवाल। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो जवाब देते हैं, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वो सवाल करते हैं, मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देते हैं, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वो सवाल करते हैं, जो आदमी तुम्हारी तरफ मबूस किया गया इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जवाब देता है, हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरी मालूमात क्या है, यानी ये सारी बातें तुझे कैसे पता चली? वो जवाब देता है, मैं अल्लाह की किताब पढ़कर ईमान लाया और मैंने इसकी तस्दीक की। फिर एक पुकारने वाला आसमान से ऐलान करता है, इस बंदे ने सच कहा, इसका ठिकाना जन्नत में बनाओ, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। चुनाचे जन्नत की हवाएं और खुशबू इसके पास आने लगती है, इसकी कब्र हदे निगाह तक कुशादा कर दी जाती है। आपने मजीद फरमाया कि इसके पास एक खुश शक्ल आदमी आता है जिसके कपड़े भी खूबसूरत होते हैं और खुशबू भी उम्दा होती है। वो आकर कहता है, तुझे खुशकुन खबर की बशारत देता हूँ, इसी दिन का तुझसे वादा किया गया था। चुनाचे वो भी जवाबन कहता है, अल्लाह ताला तुम्हें भी खुश व खुर्रम रखे, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो कोई अच्छी खबर ही ला सकता है, यानी इतना अच्छा चेहरा है तो तुम अच्छी ही बात करोगे। वो जवाब देता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। वो जन्नत की नेमतों को देखता है तो दरख्वास्त करता है, ऐ रब क्यामत जल्द बर्पा कर दे, ऐ रब क्यामत जल्द बर्पा कर दे ताकि मैं अपने अहलोयाल तक पहुंच सकूं। क्या दिल चाह रहा है, इस वक्त गर्मी भी लग रही है तो कब्र सोचे, खिड़की भी नहीं होगी, एसी तो छोड़े पंखा भी नहीं होगा, और आपने अल्लाह के रास्ते में खून नहीं चले पसीना बहाया, आपने पांच नमाजें ही पढ़ी, चाहे सुन्नत नफिल ना भी कोई पढ़ी, नमाजें एक्स्ट्रास नहीं भी थे, फर्ज तो पूरी किए ना, और आपके साथ अगर अल्लाह इतना अच्छा मामला कर दे और क्या चाहिए। आज इतना ज्यादा इंसानियत को बिजी कर दिया गया है कुछ चीजों में लाकर, क्यों सोचते नहीं? यकीन करें, इस मौजू पे जब आज से 10-15 साल पहले हम बात करते थे, पढ़ाने वाले लोग फूट फूट कर रोते थे, यंग बच्चे बच्चे। आज तो आप तो माशाल्लाह बड़े ही अच्छे एजुकेशनल मोड के लोग लग रहे हैं मुझे। 10 सवाल करेंगे लोग, साइंस जितनी ऊपर गई ना, लोगों को ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, जो अगर कब्र में जाके जिंदा होंगे तो अंदर ऑक्सीजन कैसे आएगी, फिर उठ के बैठ कैसे सकता है, फिर वो बोलेगा कैसे। तो यूं में दोनों बिल गई यही है। आज इस दुनिया में अगर हम अपने लिए अच्छी सी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह 4 दिन की बात है। हमारा तो सफर ही बड़ा मुख्तसर है, 4 दिन की जिंदगी। सहाबे कराम का इस तरीके से तज़किया हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए कि वो छोटी छोटी चीज़ों को महसूस ही नहीं करते थे। कैसे मक्का और मदीना की गलियों में उन्होंने इस दीन के लिए मुश्किलात से ही, आज हम अपना कंफर्ट जोन तो देख, आज हम वो देखें जो खा के आते हैं, क्या खाया है, हम इस काबिल थे जो खाए हैं, हम इस काबिल हैं जो पहना है, जिन गाड़ियों में हम बैठते उठते हैं, क्या हम इस काबिल हैं, हम इस काबिल नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है। तो इतनी बात सुनकर आपका मेरा अमल क्या होना चाहिए कि नंबर एक दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए अच्छे फरिश्तों को भेजना, हमारी जब रूह दुनिया से जाए खुशबू आए, अल्लाह हमारी अच्छी खैर फैल जाए, अल्लाह हमारी वजह से दुनिया में खैर हो। और आप याद रखिए, जिस बंदे से जितनी खैर फैलेगी ना, उतनी उसकी कब्र अल्लाह वसी करते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख भी सुनना पड़ेगा, हदीस अभी पूरी नहीं हुई। और जब काफिर इस दुनिया से रुखसत और सफरे आखरत की तैयारी में होता है तो आसमान से इसके पास फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे स्याह होते हैं और इनके पास जहन्नमी टाट होते हैं, हदे निगाह तक इसके पास बैठ जाते हैं। आखिर में मलकुल मौत अलैहि सलाम तशरीफ लाते हैं और इसके सर के पास बैठकर कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह तआला की नाराजगी और गुस्से के पास पहुंचो। फिर इसके जिस्म में दाखिल होकर इस तरह इसकी रूह निकालते हैं जैसे गोश्त वाली नोकदार सीख भीगी ऊन से निकाली जाएगी। कभी बारबेक्यू किए, ग्रिल, लोहे की सुलाहें गोश्त में डालकर उसको कोयलों पर रखते हैं। इंसान है ना, तकलीफ तो हर एक होती। मलकुल मौत अलैहि सलाम रूह निकाल लेते हैं, आंख झपकने से पहले दूसरे फरिश्ते इनके हाथ से लेकर उसे टाट, जूट चुभने वाला, बोरी, पाकिस्तान में बोरियां कहते हैं इसको, टाट में रख लेते हैं। इस टाट से ऐसी बदबू आती है जैसी जमीनी गले सड़े मुर्दार की हो। कभी गोश्त की को बोटी किचन में ऐसी नीचे गिर जाए पता ही ना चले, और 2-4 दिन गुजरे आपको लगेगा यहाँ से कोई गंदी स्मेल आती है गोश्त। फरिश्ते इस रूह को लेकर ऊपर जाते हैं, फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये किसकी खबीस रूह है? तो फरिश्ते इसका बदतरीन किस्म का दुनियावी नाम लेकर बताते हैं, ये फलां बिन फलां है। इस तरह वो फरिश्ते आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं। जब इसकी खातिर दरवाजा खोलने की दरख्वास्त की जाती है तो नहीं खोला जाता। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत की, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस्समाई वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल हियात। इनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और इनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। ये मुहावरा भी है, नामुमकिन बात के लिए कहते हैं अरब लोग, सूरह आराफ की आयत 40 है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसका नाम है अमाल कैद खाने के दफ्तर में रख दो जो कि सबसे निचली जगह में है, निचली जमीन में है। चुनाचे बहुत बुरी तरह इसकी रूह को आसमान से नीचे फेंक दिया जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तिलावत फरमाया, सूरह हज की आयत 31 है, वमै युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतुख्तफुहु तैरु औ तहवी बिही रीहु फी मकानिन सखीक। और जो कोई अल्लाह तआला के साथ शिर्क करे तो गोया वो आसमान से गिर गया, अब या तो इसे परिंदे उछक ले जाएंगे या इसको हवा ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहाँ इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। फिर इसकी रूह वापस कर दी जाती है और कब्र में इसके बाद दो सख्त मिजाज फरिश्ते आते हैं जो इसे झंझोड़ कर बिठा देते हैं। जरा सोचिए, झंझोड़ते हैं और इससे सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो जवाब में इंतहाई परेशानी से कहता है, ला अदरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं। फिर वो पूछता है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो फिर परेशानी के साथ कहता है, ला अदरी, मुझे खबर नहीं। फिर वो पूछते हैं, जो शख्स तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया था इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, मुराद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो परेशानी के आलम में कहता है, मुझे तो खबर नहीं, आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि ये झूठा है, इसका बिस्तर आग का बना दो, चुनाचे इसके बाद जहन्नम की गर्मी और लू आती है, इसकी कब्र इस हद तक तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां बाहम धस जाती हैं, फिर इसके पास बदनुमा चेहरे का आदमी जाहिर होता है जिसके कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं और बदबू के भभूके इससे उड़ रहे होते हैं। वो आकर कहता है, एक तकलीफ दे खबर है, यानी बैड न्यूज़ है, ये वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। ये मुर्दा उसे कहता है, अल्लाह ताला तुझे भी तकलीफ दे, चीज से दो चार करे, तुम कौन हो? ऐसा चेहरा तो कोई बुरी खबर ही ला सकता है। वो जवाबन कहता है, मैं तेरा खबीस अमल हूँ। फिर वो इस्तेदा करता है, रिक्वेस्ट करता है, कह परवरदिगार क्यामत बपा ना हो। पिछला क्या कहता था, क्यामत बपा। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत भी है और मुसनद अहमद में भी ये मौजूद है और भी बहुत सारी है, नासिरुद्दीन अल्बानी ने भी इस हदीस को सही कहा। आप मुझे बताइए, आप में से किसी को 1% भी डाउट है कि ऐसा नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और सुन्नत इतने क्लियर वाजे तरीके से ये बातें हमें बताते हैं कि हम जानते हैं हमारा ईमान है कैसा होगा। अभी इस हदीस में जो चीज़ें आई इसमें कुछ एड ऑन्स, एक और हदीस सुनिए। यह हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है और इसमें अल्लाह के नबी ने जो चीज़ बताई वो क्या है, जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है, अपने ऊपर ले, अपने माँ बाप को सोचें, अपने बड़ों को सोचिए, और अल्लाह करे हमारी औलादें हमसे नेक हों, हमारे आने वाली नस्लों की नस्लें भी नेक हों। क्या होता है, मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कफन लेकर आते हैं और मरने वाले की रूह से कहते हैं, अल्लाह की रहमत, जन्नत की खुशबू और अपने रब की तरफ इस हाल में इस जिस्म से निकलो कि तुम अपने रब से राजी हो और तुम्हारा रब तुम से राजी। तरा दिया तम मर्दे या ये तो हन नफ्सुल मुतमैना इर्जिला रब्बी की रा दिया तम मर्दे लव एट बोथ साइड। एक तरफ का प्यार नहीं निभता, अल्लाह आपसे राजी है ना, फिर आप उससे भी राजी हैं, आप राजी, रब आपसे भी राजी। सबसे खूबसूरत ताल्लुक क्या होता है, दोनों खुश हों, एक खुश हो दूसरा ना हो, ज्यादा देर नहीं चलती। अल्लाह ताला कहते हैं, तुम भी उससे राजी हो और वो भी तुमसे राजी है। चुनाचे वो रूह निकलती और उससे बेहतरीन कस्तूरी जैसी खुशबू आ रही होती है। जानते हैं कस्तूरी क्या है? हिरन के नाफ में से निकलने वाला वो पाउडर जिसका एक औंस भी कितने हजारों का है, बहुत महंगी खुशबू होती है मिस्क। यहाँ तक कि फरिश्ते एक दूसरे से लेकर इसकी खुशबू सूंघते हैं और जब आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो आसमान के फरिश्ते आपस में कहते हैं, ये कैसी उम्दा खुशबू वाली रूह है जो जमीन से तुम्हारे पास आ रही है। जब ये फरिश्ते अगले आसमान पर पहुंचते हैं तो इस आसमान के फरिश्ते भी इसी तरह कहते हैं, यहाँ तक कि वो फरिश्ते इस रूह को अहले ईमान की रूहों की मुअय्यन जगह, जिसे कुरान में एक जगह इल्लीयीन कहा गया और बाज़ उलमा के बकौल ये जगह 7 आसमानों के ऊपर है, वहां ले आते हैं। जब वो रूह यहाँ पहुंचती है तो पहले से मौजूद रूहों को इतनी ज्यादा खुशी होती है जितनी तुम में से किसी को अपने गुमशुदा भाई के वापस मिलने पर खुशी हो सकती है। चुनाचे बाज रूहें नई आने वाली इस रूह से पूछती हैं कि फला आदमी का क्या हाल है, फिर वो आपस में कहती हैं कि इसे जरा छोड़ दो ताकि ये आराम कर ले क्योंकि ये दुनिया के मसाइब में मुबतला रहा है। थोड़ा सस्ताने के बाद वो रूह जवाब देती है, क्या इसकी रूह जिसके बारे में पहली रूहें पूछती हैं तुम्हारे पास नहीं आई? यानी वो बंदा फौत हो चुका है लेकिन इल्लीयीन में नहीं गया, हाँ वो तुम्हारे पास नहीं आई, वो आदमी तो फौत हो चुका है। चुनाचे इस पर वो कहते हैं कि वो अपनी माँ हाविया उम्मुहु हाविया यानी जहन्नम में ले जाया गया है, यानी जो वहां नहीं आया इसका था कि उसका दाखला जहन्नम के स्कूल में हो गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर आदमी के पास अजाब के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, ए नाराज और मगजूब रूह यानी जिस पे गजब है, निकल अल्लाह के अजाब और उसकी नाराजगी की तरफ। चुनाचे काफिर की रूह जब जिस्म से निकलती है तो इसे इस तरह बदबू आती है जैसे किसी मुर्दार से आती है। फरिश्ते से लेकर जमीन के दरवाजे की तरफ आते हैं तो इस दरवाजे के मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं, किस कदर गंदी बू है। जैसे ही फरिश्ते अगली जमीन के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो इस जमीन के दरवाजे के मुहाफिज फरिश्ते भी ऐसा ही कहते हैं, देखिए एक अच्छा सा माहौल हो और इतने में कोई बाहर से पसीनों में डूबा हुआ आ जाए, सबको उसकी बैड स्मेल फील होगी। कभी नमाज में आपके साथ कोई ऐसा बंदा आके खड़ा हो जाता है कि आपसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो एकदम जो सब महसूस करेंगे ये बदबू किस चीज की है, उसकी बदअमालियों की और उसके बुरे अकीदे की बदबू होगी। जैसे ही फरिश्ते अगली जमीन के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो इस जमीन के दरवाजे के मुहाफिज फरिश्ते भी ऐसा ही कहते हैं, हत्ता के अजाब के फरिश्ते जो इस बदबख्त की रूह निकाल कर ला रहे होते हैं, इसे कुफार की रूहों की मुअय्यन जगह, जिसे कुरान में इसे जीन कहा गया एक जगह, और बाज़ उलमा कहते हैं कि ये 7 जमीनों के नीचे है, वहां ले आते हैं। ये हदीस भी अल मुस्तदरिक अल हाकिम की है। यकीन कीजिए ऐसा होता है। आज लोग अजाब कब्र का इनकार करते दिखते हैं, कहते हैं किधर है, नहीं हो सकता, ऐसी बातें ही हैं, कहानियां घड़ी हुई हैं, कुरान में दिखाओ किधर है अजाब कब्र। इंशाल्लाह ये हमारी सीरीज आज जिसका ये मौत का आखिरी लेक्चर है, यूमिनून बिल आखिरा में, ये ईमान बिल आखिरा में, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो शुरू होने वाला है वो क्या है, इंसान और कब्र। अगले 4-5 लेक्चर कब्र से मुतल्लिक है, फिर मैदान महशर, और इसी तरह ये पूरा तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 से ज़्यादा लेक्चर हैं जिसमें हम ईमान बिल आखिरा पूरा करेंगे। क्या हमें इनकी ज़रूरत नहीं है? हम इतने मसरूफ हैं, हम दुनिया में इतना खो गए कि हमारे पास वक्त ही नहीं है इन चीज़ों के लिए जानने का, सोचने का। और अभी हमने 2 हदीसें पढ़ी हैं, अब हदीस खोल कर देखिए, बाप के बाप भरे पड़े हैं, कुछ चीज़ों में तकरार है, इसलिए सिर्फ वो हदीसें आपके सामने रखी हैं जिसमें कोई नई बात है। तीसरी हदीस सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, जब मोमिन आदमी की रूह निकलती है तो 2 फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने रूह की खुशबू और मुश्क का जिक्र किया और कहा कि आसमान वाले फरिश्ते इस रूह की खुशबू सूंघ कर कहते हैं, ये कोई पाकीज़ा रूह है जो ज़मीन की तरफ से आई है, अल्लाह तुझ पर रहमत करे और इस जिस्म पर भी जिसे तूने आबाद कर रखा था। फिर वो फरिश्ते इस रूह को अल्लाह ताला के पास ले जाते हैं और अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि इसे इल्लीजीन में ले जाओ और क़यामत कायम होने तक इसे वहीं रखो। अच्छी खुशबू अल्लाह तक पहुंच जाती है आप कह लें। और इसके बरक्स जब काफिर की रूह निकलती है तो रावी हदीस कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने काफिर की रूह की बदबू और इस पर फरिश्तों की लानत का भी जिक्र किया। आसमान के फरिश्ते कहते हैं ये कोई नापाक रूह है जो ज़मीन की तरफ से आ रही है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि इसे सिज्जीन में ले जाओ और क़यामत कायम होने तक वहीं रखो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने काफिर की रूह की बदबू का जिक्र फरमाया तो बदबू बदबू की नफरत से अपनी चादर का दामन इस तरह अपने नाक पे रख लिया, यानी ऐसे, अब ये ऐसे तो नहीं कर रहे थे, बताया कि इस तरह रखा और हज़रत अबू हुरैरा ने फिर अपनी चादर का दामन अपनी नाक पे रखते हुए ये बात बयान की। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 2872। चौथी रिवायत लेते हैं, बस ये आखिरी रिवायत होगी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए मरने वाले के पास आते हैं तो अगर वो नेक हो तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह इस जिस्म से निकल आ, बेशक तू पाकीज़ा जिस्म में थी, तू तारीफ के लायक है, तुझे अल्लाह की रहमत और नेमतों से खुश हो जाना चाहिए, तेरा रब तुझसे राजी है। फरिश्ते मरने वाले को मुसलसल ऐसा ही कहते रहते हैं, हत्ता कि इसकी रूह इसके जिस्म से निकल आती है। फिर फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो आसमान के दरवाजे इसके लिए खुलते चले जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन है। रूह लेकर आने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं कि ये फलां आदमी है, तो सुनने वाले फरिश्ते कहते हैं कि इस पाकीज़ा रूह के लिए खुश आमदेद है, ये पहले भी पाकीज़ा जिस्म में थी, पाकीज़ा रूह आसमान के दरवाजे से खुशी खुशी दाखिल हो जा, तेरे लिए खुशखबरी है अल्लाह की रहमत की, इसकी नेमतों की और इस बात की कि तेरा रब तुझसे नाराज़ नहीं, इस तरह हर आसमान के दरवाजे से गुजरते हुए इसे मुसलसल यही खुशखबरियां दी जाती हैं, हत्ता कि वो रूह इस आसमान तक पहुंच जाती है जिस पर अल्लाह ताला है। कौन सा? 7वां आसमान। और अगर मरने वाला कोई बुरा शख्स हो तो रूह निकालने वाले फरिश्ते इससे कहते हैं, ए खबीस रूह इस जिस्म से निकल आ, बेशक तू खबीस जिस्म में थी, अब जलील होकर इससे निकल और खुशखबरी है तेरे लिए खौलते हुए पानी की, पीप की और इस तरह के बाज दूसरे अजाबों की, इसे मुसलसल यही कहा जाता है हत्ता कि इसकी रूह निकल आती है। फिर वो फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं तो आसमान का दरवाजा इसके लिए नहीं खोला जाता। कितनी बेइज्जती की बात है, आप दरवाजे पे और कोई दरवाजा नहीं खोले। आसमान के फरिश्तों की तरफ से पूछा जाता है ये कौन है, जवाब मिलता है ये फलां शख्स है, तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं इस खबीस रूह के लिए जो खबीस जिस्म में थी कोई खुश आमदेद नहीं। कोई दरवाजा खोल के आपको आता दे करके बिल्कुल खुशी नहीं हुई आपको देकर, नो वेलकम, इसे जलील और रुसवा करके वापस भेज दो। चुनाचे आसमान के दरवाजे ऐसी खबीस रूह के लिए नहीं खोले जाते हैं, और इसे नीचे लाया जाता है फिर कब्र में लौटा दिया जाता है। ये इब्ने माजा की रिवायत है, जामे और सगीर में भी है। तो ये थे चंद मनाजिर, झलकियाँ, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। दुनिया के हर मौजू पे इख्तलाफ है, अल्लाह के वजूद पे भी इख्तलाफ है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, और दूसरे इख्तलाफात तो जो हैं ही सो हैं, लेकिन एक मौजू ऐसा है जिस पे कोई इख्तलाफ नहीं, और वो मौत है। और आपने मैंने अभी टेस्ट नहीं की, आने वाली है, किसी वक्त आ जाएगी, चल पड़ी है। कहते हैं किसी ने मलकुल मौत से कहा कि तुम इतनी अचानक क्यों आते हो, उसने कहा मैं तो आने से पहले कई दफ़ा नॉक करके इतलाएं देकर आता हूँ। कहा अच्छा, वो कैसे? कहा जब तेरे बालों में एक सफ़ेद बाल था तो मेरी तरफ से एक पैगाम था आने का। तो हम सब अपनी मौत की तैयारियां करें, जीने वालों को जाने की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया के गम, दुनिया के दुख तकलीफ़ें अगर बर्दाश्त नहीं होती तो ये याद रखिए कि मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। और आज मौका है, आप सब माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं, इतने अच्छे मुल्क में रहते हैं, आपके पास इतने अच्छे मौके हैं दीन सीखने के, किताब को सीखने के, तजवीद भी कीजिए, तहफीज भी कीजिए, लेकिन कुरान का जो असल पैगाम वो इस पे तफक्कुर और तदब्बुर है, नसीहत है। वक्त के तकाजे पहचानिए, हालात बदल गए हैं, आपके बच्चों के लिए अब वो दुनिया नहीं है जो आपके लिए थी, और आपकी एक से दूसरी नस्ल ऊपर चले जाइए वो भी कभी शायद याद ही करेंगे कि ऐसा कोई था वक्त जब हमारे बड़े ये करते थे। तो अल्लाह ने आपको मुझे नेमतों में रखा हुआ है, आप सब माशाल्लाह आए, घर वालों ने अपना घर खोला, जिन्होंने इहतमाम किया अल्लाह ताला सबका कबूल भी करे, और हमें इसकी तौफीक दे कि हम गाहे बगाहे ऐसी चीजें सुनते रहे। माँ के पेट के अंदर बच्चे को ऐसे लगता है कि असल दुनिया यही है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो गुजर जाता है, वो बच्चा इस दुनिया में आता है, उसका दिल लगने लगता है। अगर माँ के पेट में एक और बच्चा भी हो, जैसे ट्विंस की सूरत में होता है, और वो पहले बच्चे को दुनिया में आता देखे तो क्या कहेगा कि मेरा भाई फौत हो गया, 9 माह से मेरे साथ था, आज फौत हो गया। बिल्कुल इस दुनिया में दिल लगता है तो मैं अगली दुनिया की तरफ बुलाया जाता है। इस मौजू पे भी बहुत सारी बात करते ही रहते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह दिल में खुशी है। जैसे सहाबी जब डेथ बेड पे थे तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्या महसूस करते हो ना, तो कहने लगे कि बहुत डर लग रहा है अपने गुनाहों का, लेकिन अल्लाह के नबी साथ ही, मुझे अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी है। तो कंधों में अल ईमान बैन अल खौफी वर रजा, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। जज़ाकुम अल्लाह खैर, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.